विनाद्य भूयो विबुधोदयाये गजेन्द्र लीलो जलमाविवेश।
बोलिए
नहीं कि आगे अगर बंद होना है तो एक बार हो जाने
चार पाँच दिनों में।
चलो ठीक है, हमको थोड़ा एक बार तो हो जाता है कम से कम। कोई वैष्णो देवी है बोले शब्दार्थ बोलिए। तेषां पुनः सतां महान भक्तों के वेद संपूर्ण ज्ञान कृतान मूर्ति ही विस्तार का स्वरूप ब्रह्म वैदिक ध्वनि अवधार्य इसे ठीक से जानकर आत्मा अपना गुण अनुवादम दिव्य गुणगान विनद्य प्रतिध्वनित भूयः पुनः विबुध विद्वानों के उदयाय लाभ या उत्थान हेतु गजेंद्र लीला हाथी के समान क्रीड़ा करते हुए जलम जल में आविवेश प्रविष्ट हुआ। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। हाथी के समान क्रीड़ा करते हुए वे महान भक्तों द्वारा की गई वैदिक स्तुतियों के उत्तर में पुनः गर्जना करके जल में घुस गए। भगवान वैदिक स्तुतियों के लक्ष्य हैं, अतएव वे समझ गए कि भक्तों की स्तुतियां उन्हीं के लिए की जा रही हैं। तो यहाँ तात्पर्य पढ़ने से पहले श्लोक के शब्दों को समझेंगे। ये भगवान के वराह अवतार का वर्णन हो रहा है। इसमें मैत्री मुनि, ये सब कथा मैत्री मुनि सुना रहे हैं विदुर जी को। तो मैत्री मुनि बता रहे हैं कि तेसाम सताम वेद वितान मूर्तिर, जो उस समय ब्राह्मण लोग थे, वैदिक स्तुतियों का पाठ कर रहे थे। तो भगवान वराह का आविर्भाव हुआ तो ब्रह्मा जी की नासा छिद्र से भगवान वराह का आविर्भाव हुआ, और वो जो है अंगूठे के पोर के बराबर, नासा छिद्र से कोई अगर चीज़ निकल सकती तो इससे बड़ी नहीं निकल सकती, अंगूठे के पोर से बड़ी चीज़ नहीं निकल सकती नासिका के छिद्र से। तो ब्रह्मा जी के नासिका के छिद्र से अंगूठे के पोर के बराबर एक जंतु निकला और आकाश में ही स्थित होकर के वो बड़ा होने लगा, और पर्वत के समान जो है वो जंतु बड़ा हो गया। तो शुकर भगवान, तो उस समय ब्रह्मा जी भी चिंतित है कि कौन है। जब तक भगवान अपने को ना जाने तब तक कोई नहीं जान सकता, और जितने ऋषि मुनि थे वो भी चिंतित थे कि कौन है, कि जीव कौन है। तो अपनी रक्षा के लिए ब्रह्मा जी और जो जितने ऋषि मुनि हैं वो क्या करते हैं, कुछ भगवान का गुणगान करते हैं, यही रक्षा होती है। जहाँ कहीं संकट हो या संकट की आशंका हो तो जो भक्त लोग हैं वो भगवान के नामों का या भगवान की स्तुतियाँ पाठ करते हैं। तो वैदिक स्तुतियों का जो है उन्होंने पाठ करना शुरू कर दिया जो ऋषि मुनि थे। तो हैं ऋषि मुनियों ने वैदिक स्तुतियों का पाठ किया तो उनको कहा गया सताम सताम तेसाम सताम वेद वितान मूर्ति, वेद वितान मूर्ति भगवान को कहा गया है, वराह भगवान को कहा गया है। वैदिक वेदों का जितना विस्तार होता है वो मूर्ति भगवान ही है, जितना भी वेदों का विस्तार होता है वैदिक मंत्र होते हैं वो सब जो है भगवान का रूप है। तो ब्रह्म अवधार्य, ब्रह्म का मतलब वैदिक ध्वनि, सताम ब्रह्म यहाँ पर है कि जो जितने ऋषि मुनि थे तो उन्होंने ब्रह्म का उच्चारण किया यानी वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया है। तो अवधार्य आत्मगुणानुवादम, तो इसको भगवान वराह देव ने अपना गुणानुवाद माना, अपना ही गुणगान माना। क्यों? क्योंकि जितने ऋषि मुनि हैं जब वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे तो वो भगवान को लक्ष्य करके कर रहे थे, इसलिए वेद मंत्रों का जो पाठ है वो सत भी हो सकता है असत भी हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति भगवान को लक्ष्य करके वेद मंत्रों का पाठ नहीं करता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति को लक्ष्य करके इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करने के लिए वेद मंत्रों का पाठ करता है तो वो सताम ब्रह्म नहीं कहा जाएगा। लेकिन ये जो ऋषि मुनि हैं इनका जो वेद पाठ था, वेद मंत्रों का पाठ था, वो सताम था यानी भगवान का गुणगान था। तो भगवान ने जान लिया, क्योंकि भगवान भावग्राही हैं, वो भाव को ग्रहण करते हैं, भावग्राही जनार्दन। तो वेद मंत्रों का जो पाठ है उन्होंने किया तो अवधार्य आत्मगुणानुवाद, अपना गुणानुवाद उन्होंने माना विनद्य भूयो, और फिर से गर्जना की। तो पहले भी गर्जना कर रहे थे, अब दोबारा गर्जना की। अब दोबारा जो गर्जना की वो किस लिए गर्जना की, पुष्ट करने के लिए कि तुम लोग जिस की स्तुति कर रहे हो, जिसको याद कर रहे हो संकट से छूटने के लिए, मैं वही हूँ। तो उनको शंका थी कि कोई असुर तो नहीं है जो हमें संकट पहुँचाए, हमारे संकट उत्पन्न करे। तो यहाँ भगवान ने जब गर्जना की उनके वेद मंत्रों को सुन करके, तो भगवान ने उनकी उस प्रार्थना को पुष्ट किया कि तुम जिस की आराधना कर रहे हो, जिस का स्मरण कर रहे हो, जिसकी स्तुति कर रहे हो संकट से छूटने के लिए, मैं वही हूँ। मैं तुम्हारे लिए संकट उत्पन्न नहीं कर रहा हूँ, बल्कि तुम्हारे संकट को दूर कर रहा हूँ। इसलिए विनत भूयो, तो फिर से उन्होंने गर्जन किया है ना। और विबुधो दया, विबुधों, विबुध का मतलब देवताओं, देवताओं के उदय के लिए, देवताओं के उदय, उदय का मतलब है उन्नति, सुख है, तो देवताओं के सुख के लिए विबुधो दया है। गजेंद्र लीलो, गजेंद्र की लीला करते हुए जलम आविवेश है, जल में प्रवेश किए। तो जो गजेंद्र, गजेंद्र का बहुत बड़ा हाथी, बहुत बड़ा हाथी होता है, तो गहरे पानी में भी जाता है और उसको कोई संकट नहीं होता है। कोई मनुष्य जो है गहरे पानी में नहीं जाता, वो बहुत डरता है, पानी बहुत गहरा है। लेकिन जो बहुत बड़ा हाथी होता है तो गहरे पानी में वो जाता है, क्योंकि वो उसके लिए एक आनंद का विषय होता है। तो गहरे पानी में वो जाता है क्योंकि वो बहुत बड़े आकार का होता है, ऊंचाई उसकी बहुत होती है। तो गजेंद्र लीलो, तो भगवान ने उस जल में प्रवेश किया गजेंद्र की लीला करते हुए, जलम आप। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं श्रील प्रभुपाद की। भगवान का कोई भी रूप दिव्य तथा ज्ञान एवं करुणा से पूरित होता है। भगवान कोई भी रूप, प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान कोई भी रूप दिव्य होता है और ज्ञान से और करुणा से पूरित होता है। तीन चीजें हैं भगवान के रूप में, तीन विशेषताएं हैं। पहली विशेषता क्या है, भगवान का रूप दिव्य है। हमारे शरीर की तरह भगवान का शरीर नहीं होता है। भगवान का शरीर कैसा है, सच्चित आनंद है, और हमारा शरीर असत अचित निरानंद है। तो भगवान का शरीर दिव्य है, पहली बात। और दूसरा, ज्ञान से पूर्ण है। तो ज्ञान से पूर्ण है तो सच्चित आनंद में ये भी आ जाता है। चित, चित का मतलब ज्ञान से पूर्ण है ना, और आनंद से पूर्ण है। भगवान का शरीर आनंद से पूर्ण है, तो चूंकि उनके शरीर में आनंद ही आनंद है, कोई कष्ट नहीं है, तो इसलिए दूसरों के कष्ट को देख करके उनको करुणा पैदा होती है। करुणा उसी व्यक्ति को पैदा होती है दूसरों को कष्ट देख करके जिसे कोई कष्ट नहीं है और जो आनंद प्राप्त करता है। अगर कोई व्यक्ति खुद ही कष्ट में है तो दूसरों के कष्ट को देख करके उसको करुणा नहीं पैदा होगी, क्योंकि वो खुद ही कष्ट में है। यानी करुणा तभी पैदा होती है जब कोई व्यक्ति कष्ट में नहीं होता है और वो सुख में होता है और दूसरों को देखता है दुखी, तो करुणा पैदा होती है। तो भगवान के अंदर करुणा इसलिए होती है क्योंकि उनका शरीर क्या है, सच्चिदानंद है। चूँकि आनंद है, उनके पास आनंद ही आनंद है, उनके शरीर में दुख लेस मात्र भी नहीं है, तो इसलिए उनको करुणा, उनको करुणा होती है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान के कोई भी रूप, कोई भी रूप का मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने बराह रूप धारण किया है तो इसमें कुछ अब कमी हो गई या कुछ अशुद्धि हो गई, क्योंकि तो जो सुअर है तो सुअर को देख करके ही हम लोग नफरत करते हैं। खैर, भगवान वो सुअर नहीं है, ग्राम सुकर नहीं है। भगवान का जो अवतार है ये ग्राम सुकर का अवतार नहीं है। एक तो ग्राम सुकर है जो मल खाता है, और दूसरा होता है वन सुकर, जंगली सुअर। तो भगवान ने जंगली सुअर का अवतार धारण किया है, तो जंगली सुअर मल नहीं खाता, लेकिन तो भी जंगली सुअर से भी हम बहुत नफरत करते हैं या भयभीत होते हैं। तो भगवान का जो सुकर अवतार है वो बिल्कुल अलग ही है, तो उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। भगवान के शरीर में किसी प्रकार का दोष नहीं है, वे करुणा मूर्ति हैं। जो जंगली सुअर है उसको थोड़ी करुणा पैदा होती है, जंगली सुअर तो जैसे देखता है मार डालेगा। अरे वो जंगली सुअर किसी को देखता है तो मार डालता है ना। तो भगवान का जो भगवान ने सुकर रूप धारण किया है तो उस रूप में भी वे भक्तों के प्रति करुण है, वत्सल है, भगवान भक्त वत्सल है। ये प्रभुपाद इसलिए लिखते हैं ये सब बातें कि करुणा से पूरे थे भगवान को कोई भी रूप हो, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं शुकर के रूप में तो भगवान का जो है कुछ खराब भाव होगा, अबे भक्तों से फिर उतना प्रेम नहीं करेंगे, भक्तों के ऊपर उतनी दया नहीं करेंगे क्योंकि शुकर भाव में। तो भगवान का जो भाव है वो वैसा नहीं होता है जैसा उन्होंने रूप धारण किया, तो शुकर का रूप धारण किया तो शायद कुछ कठोरता होगी। तो हमारे दिमाग में चूँकि भौतिक बुद्धि है, तो भौतिक बुद्धि होने के कारण ये विचार आते हैं कि सूर्य के रूप में अवतार धारण किया है तो वो जो है उतना स्तुति करने के योग्य नहीं है, पूजनीय नहीं है, या उतना प्रेम करने लायक नहीं है, तो भगवान में फिर प्रेम नहीं होगा। इस रूप में तो भगवान अपने भक्तों के साथ प्रेम नहीं कर सकते, तो प्रभुपाद मना कर रहे हैं कि ऐसे नहीं सोचना है। कोई व्यक्ति सोचता है कृष्ण के रूप में तो भगवान प्रेम करते हैं, शुकर के रूप में तो भगवान प्रेम नहीं करेंगे, नहीं, भगवान प्रत्येक रूप में, ये फूल हो फूल से उसको प्रत्येक रूप में भगवान दिव्य हैं और ज्ञान और करुणा से पूर्ण हैं। आगे भगवान समस्त भौतिक कलमश का विनाश करने वाले हैं। प्रत्येक रूप में भगवान का जो बड़ा रूप है, बड़ा अवतार है, तो उसको नहीं सोचना चाहिए कि इसमें कुछ जो है कमी हो सकती है या कुछ दोष या अशुद्धियाँ हो सकती हैं। भगवान का प्रत्येक रूप समस्त भौतिक कलमश का विनाश करने वाले हैं क्योंकि उनका स्वरूप साक्षात वैदिक ज्ञान है ना। तो यहाँ पर क्या शब्द है, प्रभुपाद लिख रहे हैं भगवान का रूप साक्षात वैदिक ज्ञान है, यहाँ पर क्या शब्द है, वेद विधान है मूर्ति, वेद विधान मूर्ति, भगवान का की जो मूर्ति है वो क्या है, वेदों का विस्तार ही है, वेदों का विस्तार है। नहीं, वेद मंत्र जितने शुद्ध हैं, वेद मंत्रों का पाठ करने से जैसे हम शुद्ध होते हैं, उसी प्रकार की जो शुद्धि है वो भगवान का दर्शन करने से और भगवान का स्मरण करने से उनके नामों में भी है। बराह भगवान का जो नाम है, रूप है, उनका स्मरण भी उतना ही पवित्र करने वाला है। तो ये प्रभुपाद लिख रहे हैं आगे, क्योंकि उनका स्वरूप साक्षात वैदिक ज्ञान है, सारे वेद भगवान के दिव्य रूप की पूजा करते हैं। तो वेदों का उद्देश्य केवल ये नहीं है कि एक रूप को माने, वेद जो है यही स्वीकार करते हैं कि भगवान किसी भी रूप में आए तो वो रूप हमेशा वंदनीय है, स्मरणीय है, हमेशा स्मरणीय है, वंदनीय है, अर्चनीय है। आगे वैदिक मंत्रों में भक्तगण भगवान से चमचमाते तेज को हटाने की प्रार्थना करते हैं क्योंकि ये उनके असली मुखमंडल को आच्छादित करता है। वेद की प्रभुपाद विशेषता बताते हैं क्या, कि वैदिक मंत्रों में भक्तगण भगवान से चमचमाते तेज को हटाने की प्रार्थना करते हैं क्योंकि ये उनके असली मुखमंडल को आच्छादित करता है। एक मंत्र है वेद का, एक वेद मंत्र ऐसा है जिसमें प्रार्थना की गई है कि अपने तेज को हटा लीजिए क्योंकि आपका मुख इससे ढका हुआ है। कोई बता सकता है वो मंत्र, ईशोपनिषद का मंत्र है, वो मंत्र है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पोषन्न पापृणु सत्धर्माय दृष्टये। ईशोपनिषद का ये मंत्र है, इसमें प्रार्थना की गई है। तो लोग तो सोचते हैं भाई वेदों में तो भगवान का कोई रूप नहीं बताया गया है और वेद जो है भगवान को निराकार बताते हैं, इसलिए भगवान निराकार है, हम तो भगवान को निराकार मानते हैं। तो जो आर्य समाजी लोग हैं वो इसी बात का दावा करते हैं, तो वे भागवत को, पुराणों को भी नहीं मानते, तो पुराणों में भगवान के रूप का वर्णन है, तो कहते हैं हम पुराणों को नहीं मानते, हम तो वेद को मानते हैं, और वेद में भगवान का निराकार, भगवान को निराकार बताया गया तो हम भगवान को निराकार मानते हैं, तो वेद ही सर्वोच्च है। ये प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि वेद मंत्र में भी ये प्रार्थना की गई है कि अपने ब्रह्म तेज को हटा लीजिए ताकि हम आपका मुंह देख सकें। भगवान ने अपने को अपना मुख छिपाया हुआ है, किससे? प्रकाश के द्वारा। कोई व्यक्ति अपना मुंह छिपाता है अंधेरे में, और भगवान अपना मुंह छिपाते हैं प्रकाश में। इतना ब्रह्म तेज उनका होता है हजारों सूर्यों के समान, कि जो अभक्त लोग हैं वो नहीं देख पाते, प्रकाश के अलावा कुछ नहीं देख पाते हैं। तो उनका निष्कर्ष होता है कि ईश्वर प्रकाश है। क्या बोलते हैं? गॉड इज लाइट। एक उन्होंने मनाया हुआ है वाक्य, महावाक्य, गॉड इज लाइट। क्योंकि अगर वो बहुत तपस्या करते हैं तो भगवान का जो दर्शन है वो प्रकाश के रूप में देखते हैं, भगवान अपने को प्रकाश में छिपाते हैं, और उनको लगता है, उनको सब परम सत्य मालूम हो गया कि ईश्वर प्रकाश है, एक प्रकाश का ही दर्शन कर पाते हैं। जैसे भागवत के 8वें स्कंद में भी सब देवता क्षीर सागर के तट पर जब प्रार्थना करते हैं भगवान से, तो भगवान प्रकट होते हैं। तो जितने देवता हैं वो भगवान के जो है चारों तरफ पैर फैले हुए प्रकाश से उनकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं, वो प्रकाश के अलावा कुछ नहीं देख पाते। लेकिन जिनके पास भक्ति के नेत्र हैं, प्रेमान जन छुरते भक्ति विलोचने संता सदैव हृदय से विलोक अंधी, तो प्रेम का अंजन लगा हुआ है, भक्ति के नेत्र विकसित हो चुके हैं। तो ब्रह्मा हैं, शिव जैसे जो महाभागवत हैं उस प्रकाश के अंदर देख पा रहे हैं भगवान का कितना सुंदर रूप है। और भागवत ने उसका बड़े विस्तार से वर्णन कि भगवान कितने सुंदर, उनकी कैसी आँखें हैं, कैसी नासिका, कैसे होंठ, सब उनके आभूषण सब कुछ दिखाई पड़ रहे हैं, तो प्रकाश के अंदर उनको दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन जितने देवता हैं चूंकि उनके अंदर ऐसी भक्ति नहीं है तो वे क्या देखते हैं? केवल प्रकाश, प्रकाश के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा उनको। तो इस तरह से वैदिक मंत्र में प्रार्थना की गई है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्, कि जो सोने जैसा जो आवरण है उसके द्वारा सत्य का मुंह ढका हुआ है। तत्तम पोषण न पावृणु, तो हे पुरुषोत्तम उसको आप हटा लीजिए, सत्य धर्माय दृष्टये, क्योंकि मैं सत्य को और धर्म को जानना चाहता हूँ, इसलिए आप उसको हटा लीजिए। तो आपका जो मुख है वो परम सत्य है, परम धर्म है, उसको मैं देखना चाहता हूँ, मैं परम सत्य को परम धर्म को जानना चाहता हूँ, इसलिए आप उसको हटा लीजिए। तो ये प्रार्थना है। तो प्रभुपाद ये लिख रहे हैं कि इसका मतलब क्या है कि वेद भगवान का रूप मान रहे हैं, वेदों ने भगवान के रूप को माना है, इसीलिए तो वेद प्रार्थना कर रहे हैं कि अपने प्रकाश को हटा लीजिए ताकि हम आपका रूप देख सकें, है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं कि वेद जो है भगवान के रूप का ये वर्णन कर रहे हैं। अगर भगवान के रूप का प्रत्यक्ष वर्णन नहीं है तो भी संकेत तो है, वेदों में भगवान के रूप का तो संकेत है। भगवान का नाम, भगवान का रूप वेदों में गुप्त है, वेद नहीं जान पाते हैं, लेकिन फिर भी वेद दिशा दिखा रहे हैं हम कि आप परम सत्य को, परम धर्म को अगर जानना चाहते हैं तो भगवान से प्रार्थना करो कि वो प्रकाश को हटा लीजिए। तो भगवान ने अपने को प्रकाश के अंदर छिपाया हुआ है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं आगे, वेद भगवान के कोई भौतिक रूप नहीं होता किंतु उनके स्वरूप को सदैव वेदों के रूप में समझा जाता है। वेदों को भगवान की श्वास कहा गया है और श्वास वेदों की आदि जिज्ञासु ब्रह्मा ने अपने भीतर खींची थी। यहाँ प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि जो भगवान ने ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान दिया, भगवान ने ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान दिया, कैसे ज्ञान दिया? तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवये, कि ब्रह्म यानी वेद उन्होंने वेदों का ज्ञान दे दिया हृदय से, आदि कवये, आदि कवि यानी ब्रह्मा जी को, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, तो ब्रह्म का ज्ञान या वेदों का ज्ञान भगवान ने उनको हृदय में दे दिया। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं कि किस प्रकार से दिया, कि भगवान की श्वास से वैदिक मंत्र सब निकलते हैं, जितने वैदिक मंत्र हैं भगवान की श्वास से निकलते हैं, हमारे श्वास से कोई मंत्र नहीं निकलता। मैं श्वास निकालता हूँ तो कोई मंत्र नहीं निकलता, कोई शब्द नहीं निकलता, लेकिन भगवान की श्वास में सब वैदिक मंत्र हैं। और भगवान ने श्वास जो है छोड़ी और ब्रह्मा जी ने श्वास खींची तो वैदिक मंत्र ब्रह्मा जी को प्राप्त हो गए। तो प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि वेदों को भगवान की श्वास कहा गया है और वो श्वास वेदों की आदि जिज्ञासु ब्रह्मा ने अपने भीतर खींची थी। आदि कवि, आदि कवि या आदि जिज्ञासु, तो ब्रह्मा जी चूंकि भगवान के तत्व को जानना चाहते हैं तो भगवान ने वैदिक मंत्र जो है अपनी श्वास के द्वारा निकाले और ब्रह्मा जी ने वो श्वास के द्वारा ले लिए। ये भी कीड़ा है, एक फूल और फूल। इसी में डाल दिया, इसी को डाल दो। तो मैं क्या बता रहा था, ब्रह्मा जी ने श्वास जो ली भगवान की श्वास निकली और श्वास ले ली, है ना। हम लोग किसी की श्वास नहीं लेना चाहते, अशुद्ध है। हम लोग श्वास जब बाहर निकालते हैं तो वो हवा अशुद्ध होती है ना। अपनी श्वास से हम हवा को अशुद्ध करते हैं, इसलिए यहाँ पर भी हर जगह वेंटिलेटर है, एग्जॉस्ट फैन है, कि हमारी श्वास से जो निकली हवा है वो ऊपर जाएगी और ताज़ी हवा अंदर आएगी। यानी भगवान की श्वास बहुत शुद्ध है। तो भगवान ने श्वास के द्वारा सब वैदिक मंत्र निकाल दिए और ब्रह्मा जी ने श्वास ले ली और सब वैदिक मंत्र उनके हृदय में आ गए। तो प्रभुपाद ये बता रहे हैं। फिर ब्रह्मा के नथुने से ली गई सांस से भगवान शुक्र प्रकट हुए। अब ब्रह्मा जी ने श्वास जब बाहर निकाली तो शुक्र भगवान उत्पन्न हुए। तो प्रभुपाद ये बता रहे हैं, अतः शुक्र भगवान शुक्र का अवतार साक्षात वेद है। तो वेद है, वेद विधान मूर्ति जो शब्द कहा गया है। तो प्रभुपाद बड़ी अच्छी व्याख्या की है कि वेद विधान मूर्ति क्यों कहा गया। तो भगवान की श्वास से जितने वेद निकले ब्रह्मा जी श्वास के द्वारा ले लिए और जब ब्रह्मा जी ने श्वास बाहर निकाली तो उसी से ही शुक्र भगवान प्रकट हुए। तो वो वेद मूर्ति हैं, सब वैदिक मंत्र जो है एक आकार आकार बन गए शुक्र का आकार। तो वेद विधान मूर्ति है ना, इसलिए इनको वेद वराह है, यज्ञ वराह कहा जाता है, वेद वराह है। तो संपूर्ण वैदिक मंत्रों ने एक रूप धारण किया है, वो क्या है, वराह देव, वराह देव हैं वो, है ना, साक्षात वेद है, वेद विधान मूर्ति है। आगे उच्च लोकों के मुनियों द्वारा अवतार का महिमा गान वास्तविक वैदिक मंत्रों से युक्त था। जब भी भगवान का महिमा गान होता है तो ये समझा जाना चाहिए कि वैदिक मंत्रों का ठीक से उच्चारण किया जा रहा है। अगर आप भगवान का गुणगान कर रहे हैं तो वैदिक मंत्र नहीं भी हैं, आप अपनी भाषा में भगवान का गुणगान कर रहे हैं। या जैसे गोपियाँ हैं तो वो तो ब्रज भाषा में कृष्ण का जो है गुणगान करती हैं या लीलाओं का वर्णन करती हैं, तो वो भी जो है वैदिक मंत्र हैं। कोई वैदिक मंत्र नहीं जानता लेकिन वो अपनी भाषा में और अपने भाव में कृष्ण का अगर वर्णन करता है तो वो जो है प्रभुपाद क्या कहते हैं कि वैदिक मंत्रों का वो सही सही उच्चारण कर रहा है, वास्तविक उच्चारण कर रहा है वो। कोई व्यक्ति वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी करे उसके अंदर वो भाव ना हो, और वो उनका भाव क्या होता है कि भगवान निराकार है, तो वो बेकार है, उसका वैदिक मंत्रों का पाठ बेकार है। जैसे कहा गया पारम गतोपि वेदानाम सर्वशास्त्रार्थ विद्यपि योन सर्वेश्वरे भक्तस्तम विद्या पुरुषाधमम। अगर भगवान का भक्त नहीं है और वेदों का उसने पार पा लिया, सब वेद पढ़ लिए, सर्वशास्त्रार्थ सब शास्त्रों के अर्थों को भी जानता है, लेकिन अगर भक्त नहीं है, भगवान का भक्त नहीं बना है, तो उसको पुरुषाधम मानना चाहिए, तो उसका वेद ज्ञान, वेद का पाठ जो है उसका बेकार है। तो वो शुद्ध पाठ भी अगर कर रहा है वेदों का, लेकिन वो अगर भगवान के गुणों को नहीं मान रहा, भगवान की रूप, भगवान के नाम, भगवान के गुणों को नहीं मान रहा है, वो सोचता है भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान का कोई नाम नहीं है, भगवान के कोई गुण नहीं है, तो उसका वेद पाठ भी जो है क्या है, अशुद्ध है। और जो भक्त हैं भगवान के, वो अपनी भाषा में भगवान का गुणगान कर रहे हैं, तो उसके लिए ये कहा गया कि वो शुद्ध वेद पाठ कर रहे हैं उनका, हालांकि वेद नहीं जानते वो, उनका जो है उन्होंने शुद्ध वेद पाठ कर लिया। तो ये प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जब भी भगवान का महिमा गान होता है तो ये समझा जाना चाहिए कि वैदिक मंत्रों का ठीक से उच्चारण किया जा रहा है। अतः जब वैदिक मंत्रों का उच्चारण हुआ तो भगवान प्रसन्न हुए, अपने शुद्ध भक्तों को प्रोत्साहित करने के लिए पुनः एक बार उन्होंने गर्जना की। प्रोत्साहित तो उत्साह दिलाया, उनकी शंका मिटाई कि तुम लोग शंका मत करो कि मैं कोई दुष्ट असुर हूँ, तुम्हारे लिए संकट पैदा करूंगा, मैं वही हूं जिसका तुम गुणगान कर रहे हो, जिसकी तुम प्रार्थना कर रहे हो, जो तुम्हारे संकटों को मिटाने वाला है, मैं वही हूं। तो भगवान ने गर्जना की, तो भगवान बात नहीं कर रहे हैं, उनसे बात नहीं कर रहे हैं, वो शुक्र की चेष्टा कर रहे हैं। तो भगवान शुक्र की चेष्टा से भी वो कार्य पूरा कर देते हैं। हम मनुष्य की बोली बोलते हैं तब मैं अपनी बात समझा सकता हूँ, लेकिन भगवान अगर ना भी बोले मनुष्य की बोली, तो अपनी गर्जना के द्वारा ही उन्होंने उनका संदेह दूर कर दिया। तो भगवान ने अपनी गर्जना के द्वारा ही संदेह दूर कर दिया। आगे चल करके मनुष्य की बोली बोलेंगे हिरण्याक्ष से, वो आगे कथा आएगी, हिरण्याक्ष के साथ जो है भगवान मनुष्य की बोली बोलेंगे, तब युद्ध होगा। नहीं, अभी ब्रह्मा जी के साथ, ऋषियों के साथ भगवान मनुष्य की बोली नहीं बोल रहे हैं, वराह के रूप में जो है गर्जना कर रहे हैं। वो गर्जना बहुत प्यारी है, उन भक्तों को, ऋषि मुनियों को भगवान की गर्जना ऐसी अच्छी लगती है जैसे कि बच्चा जो है अगर कुछ आवाज़ निकालता है, तोतली आवाज़ निकालता है, तो माता पिता को बड़ा आनंद आता है। तो भगवान ने अभी भी जन्म लिया है, तो इस भावना से जो ऋषि मुनि हैं और ब्रह्मा जी हैं वो मतलब भगवान के प्रति स्नेह का अनुभव कर रहे हैं, कि जैसे वो गर्जना कर रहे हैं, जैसे बच्चा तोतली बोली बोले तो माता पिता को आनंद होता है, है ना। किस प्रकार से आगे प्रभुपाद लिखते हैं, अतएव जब वैदिक मंत्रों का उच्चारण हुआ तो भगवान प्रसन्न हुए और अपने शुद्ध भक्तों को प्रोत्साहित करने के लिए पुनः एक बार उन्होंने गर्जना की। तो भगवान प्रसन्न हुए उनके वैदिक मंत्रों के उच्चारण से, और भगवान ने गर्जना की तो ये ऋषि मुनि प्रसन्न हुए, है ना, उनको पूरा उत्तर मिल गया, अपनी प्रार्थना का पूरा उत्तर मिल गया उनको, है ना। और उस समय ब्रह्मा जी को चिंता थी कि पृथ्वी कहाँ चली गई, अब पानी में डूब गई है, तो इतनी बड़ी जल राशि है, तो वहाँ पर पृथ्वी कैसे ढूंढ सकते हैं, पानी के अंदर कौन जाएगा, और पानी के अंदर कोई जाए तो पृथ्वी को कैसे ढूंढेगा, और पृथ्वी को ढूंढ भी ले तो निकालेगा कैसे। तो ये चिंता तो ब्रह्मा जी कर ही रहे थे, और भगवान ने अपनी गर्जना से उनकी चिंता दूर की, और भगवान गर्जना के द्वारा ये संकेत कर रहे हैं कि मैं तुम्हारी चिंता पैदा करने के लिए नहीं प्रकट हुआ हूँ, तुम्हारी चिंता को दूर करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, और निमग्न पृथ्वी का उद्धार करने के लिए जल में प्रविष्ट हो गई, जल में प्रवेश किया उन्होंने। गजेंद्र लीलो जलम आविवेश है, गजराज की लीला के साथ उन्होंने जल में प्रवेश किया। कोई व्यक्ति गहरे पानी में प्रवेश करता है तो बहुत डरता है कि अब तो मैं मर गया, अब तो मैं मर जाऊंगा, है ना। भगवान ब्रह्मदेव जब पानी में प्रवेश करते हैं तो वो लीला पूर्वक प्रवेश करते हैं, अपना एक आनंद प्राप्त करने के लिए जल में प्रवेश करते हैं। इसलिए कहा गया है गजेंद्र लीलो जलम आविवेश है, वो जो जल है वो गर्भ समुद्र का जल है। गर्भ समुद्र का जल ब्रह्मांड का आधा हिस्सा उससे भरा हुआ है। ब्रह्मांड 50 करोड़ योजन की ऊंचाई का है। अंडा ब्रह्म अंड, ब्रह्मांड बड़ा अंडा 50 करोड़ की ऊंचाई का है, 50 करोड़ योजन। तो आधा ब्रह्मांड का मतलब कितना हुआ, 25 करोड़ योजन। इसमें 12 से गुणा करें तो किलोमीटर बनते हैं, तो 25 करोड़ में 12 से गुणा करिए तो कितना होगा, 300 करोड़। 300 करोड़ किलोमीटर गहरा पानी है, आप समझे, 300 करोड़ किलोमीटर गहरा पानी है, उसमें कोई प्रवेश करे मर जाएगा। जब भगवान प्रवेश करते हैं तो उनका एक आनंद है। गजराज प्रवेश करता है, नदी में प्रवेश करता है, सरोवर में प्रवेश करता है तो मंथन करता है, पानी का मंथन करता है, आनंद लेता है। नदी में सरोवर में कोई मनुष्य प्रवेश करता है, है? है? तो मन में सोच रहा है कि कहीं पैर ना फिसल जाए मेरा, कोई और दुर्घटना ना हो जाए, तो बहुत डरते डरते प्रवेश करता है। भगवान गजेंद्र लीला से प्रवेश करते हैं। गजेंद्र लील ये भगवान का एक नाम भी है। भगवान जो है मनुष्य के रूप में जब अवतार लेते हैं तो भी उनको कहा जाता है गजेंद्र लील। उस समय वो पानी में तो प्रवेश नहीं करते हैं, लेकिन उनकी चाल होती है मत गजराज की तरह, जैसे मत मतवाला हाथी होता है, जैसे चाल चलता है मस्तानी चाल, तो ऐसी चाल भगवान की होती है हमेशा। इसलिए उनकी चाल से हमेशा तुलना की जाती है गजराज की चाल, और विशेष रूप से मत हो मतवाला हाथी जैसे चलता है उस प्रकार की चाल से भगवान चलते हैं, तो भक्तों को बहुत आनंद आता है भगवान की चाल से। तो भगवान का एक नाम है गजेंद्र लील, मत गजेंद्र लील है। यहाँ पर बराय भगवान की चाल से तुलना नहीं की गई है, है? गजराज के साथ, बल्कि तुलना की गई है पानी में प्रवेश करने, ये पानी में प्रवेश करते हैं तो गजराज की तरह है। तो ऐसे भी हाथी होते, बड़े बड़े हाथी होते हैं, पर्वत के आकार के हाथी होते हैं, तो वो पानी में प्रवेश करते हैं तो वो एक आनंद, उनका एक अलग ही आनंद होता है। तो भगवान जो है 25 करोड़ किलोमीटर, कितना, 300 करोड़ किलोमीटर, 300 करोड़ किलोमीटर गहरे पानी में प्रवेश कर रहे हैं, हाँ, किस लिए, आनंद लेने के लिए। उनका आनंद भी जो है ऐसा होता है, हम लोग स्विमिंग पूल बनाते हैं उसमें आनंद लेते हैं, स्विमिंग पूल भगवान का स्विमिंग पूल वो है। 25 करोड़ किलोमीटर गहरा पानी जहाँ हो वो भगवान का स्विमिंग पूल है, तो वो जो है उसमें प्रवेश कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने कुछ चर्चा की है। इस श्लोक का हिंदी कविता में जो अनुवाद हुआ है विष्णु प्रिया देवी के द्वारा, वेदों में विस्तृत किया श्री हरि का स्वरूप वर्णन, मुनिवर की वेद रूपा स्तुति सुन के श्री हरि हुए प्रसन्न, एक बार पुनः गर्जन कर गजराज समान ही की लीला, देवों के हित के लिए निज विग्रह जल में दिया घुसा। पिछले श्लोक में आया था कि जनस तपस्तत्व निवासी नस्ते, जो स्तुति कर रहे हैं वेद मंत्र जो बोल रहे हैं ये कहाँ के निवासी हैं, जन तप और सत्य लोक के निवासी हैं, पिछले श्लोक में आया था ना। तो जन लोक, तप लोक, सत्य लोक के निवासी हैं। तो जो सात ऊपर के लोक हैं, 14 जो लोक कहे गए हैं ब्रह्मांड में, 14 लोक हैं, तो सात नीचे के, सात ऊपर के। तो सात ऊपर के लोकों में पहला है भूलोक जिसमें हम हैं, फिर उसके ऊपर भूवरलोक अंतरिक्ष है, उसके ऊपर स्वर्गलोक स्वर्ग बोलते हैं, उसके ऊपर महरलोक, फिर उसके ऊपर जनलोक, फिर तपलोक और फिर सत्यलोक। सत्यलोक सबसे ऊपर है जो ब्रह्मा जी का है ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि जना तपा सत्य निवासी है, जनलोक और तपलोक और सत्यलोक के निवासी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और पृथ्वी नहीं है, प्रसंग ये पृथ्वी है ही नहीं, जो सात ऊपर के लोग हैं उनमें से पृथ्वी लोक है ही नहीं, और सात नीचे के लोग हैं वो पृथ्वी के अंदर हैं तो भी नहीं है, क्योंकि पानी के नीचे डूबी हुई। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, ये जो सात नीचे के लोग हैं वो पृथ्वी के अंदर ही हैं तो सब डूबे हुए हैं, और पृथ्वी भी डूबी हुई है ना। तो 14 लोकों में पानी के ऊपर केवल कितने हैं, ये सात और आठ, आठ लोग तो डूबे हुए हैं, छह लोग, और छह में से जो सबसे ऊपर के जो तीन लोग हैं वहाँ के निवासी लोग जो है भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, वो भगवान का दर्शन कर रहे हैं श्रुकर अवतार के रूप में, है ना। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूँ? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि एक ही श्लोक आता है, यहाँ प्रभुपाद जो है ये एक उदाहरण दे रहे हैं कि वैदिक मंत्रों में जो है भगवान के रूप को माना गया है, वैदिक मंत्रों में भगवान का रूप माना गया है। जब ये प्रार्थना एक मंत्र में निकल रही है तो और मंत्रों में भी तो ये एक दिशा प्रभुपाद ने बतलाई है कि हमें वैदिक मंत्रों को समझना है, तो ये दिशा जो है आप समझिए कि क्या दिशा है। तो प्रभुपाद एक दिशा बता रहे हैं कि हमें वैदिक मंत्रों में ये दिशा हमें देखनी चाहिए, इस दिशा में समझना चाहिए। तो लोगों की दिशा गलत है, वो लोग सोचते हैं कि भगवान को निराकार माना है वेदों ने, है ना। हाँ, भगवान को निराकार कहा है वेदों ने, लेकिन उस निराकार का अर्थ क्या है? भगवान का, भगवान निराकार है, तो निराकार का मतलब यह है कि उनको हम इन नेत्रों से नहीं देख सकते, इन भौतिक नेत्रों से नहीं देख सकते, इसलिए उनको निराकार कहा गया, ठीक है ना। हाँ जी,
मुझे आपने बताया था कि जो पृथ्वी है इसमें तो नीचे के जो है उसके अंदर आठ लोग डूबे हुए, उसके छह बचे हुए थे, आठ डूबे हुए
हाँ पृथ्वी के अंदर ही। इनको जो है विवर भी बोलते हैं, सप्त विवर, ये सात विवर हैं पृथ्वी के अंदर, जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है, यहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है, लेकिन प्रकाश फिर भी होता है। जैसे बेसमेंट में सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है तो आपको दिन रात का कुछ अंतर नहीं पता चलता, बेसमेंट के अंदर ट्यूबलाइट का प्रकाश रहता है, उसी प्रकार से वहाँ भी जो है दिन रात का कुछ अंतर नहीं है। ये सात विवर हैं, तो ये बिल स्वर्ग भी कहे गए हैं, ये भी स्वर्ग हैं, यहाँ भी बहुत भोग हैं, बहुत भोग हैं, लेकिन सूर्य का प्रकाश नहीं है, दिन रात का कुछ अंतर नहीं है। वहाँ पर सर्पों के जो फणों में मणियाँ होती हैं उनसे प्रकाश पैदा होता है, अंधकार नहीं है, वहाँ पर बहुत भोग हैं, स्वर्ग से भी ज़्यादा भोग हैं वहाँ। लेकिन मृत्यु कैसे होती है? भगवान का चक्र जब आता है तो सिर काट देता है लोग, तो कुछ पता नहीं कि किस समय मौत हो जाए, इसलिए खतरनाक स्थिति है। स्त्रियों के गर्भ भी गिर जाते हैं, भगवान का चक्र आता है सिर काट देता है जब इच्छा, ठीक है। हाँ जी गर्भोदक साई विष्णु सबसे नीचे हैं, गर्भ समुद्र में सबसे नीचे गर्भोदक साई विष्णु है। और गर्भोदक साई विष्णु की नाभि से ही कमल उत्पन्न हुआ है और ब्रह्मांड के सबसे ऊपर भाग में गया। तो समझो कि कमल की जो नाल है वो कितना है, 50 करोड़ योजन की है। 25 करोड़ योजन तो पानी में है और 25 करोड़ योजन ऊपर है। 50 करोड़ योजन अगर 12 से गुणा करें तो 600 करोड़ किलोमीटर की नाल है। ठीक है, देखिए भगवान आदि पुरुष है, सब कुछ भगवान से उत्पन्न होता है, तो कुछ भी मतलब भगवान से अलग नहीं है। हम स्वतंत्र मान करके, भगवान से स्वतंत्र मान करके हम कहें ये वेद मंत्र हैं, ये भगवान से स्वतंत्र हैं, ऋषि हैं, ये भगवान से स्वतंत्र हैं, कोई स्वतंत्र नहीं है भगवान से। भगवान कहते हैं यद्यद विभूतिमसत्वम श्रीमदूर्जितम एवा तत्तदेवावगच्छतम मम तेजोंसे संभवम, मेरे तेज की अंश से उत्पन्न हुआ है सब कुछ, कुछ भी स्वतंत्र नहीं है। अगर आप स्वतंत्र मानते हैं कि भगवान से स्वतंत्र हैं ये वेद मंत्र के, ये ऋषि हैं, ये देवता हैं, तो वो जो है गलत है। सब कुछ भगवान के द्वारा ही नियंत्रित है और भगवान के द्वारा उत्पन्न है और भगवान ने बनाया है। मूल मूल रूप जो है, आप बात को समझिए कि आदि जो है, हर चीज का आदि भगवान है। आप ये मत समझिए कि मतलब कोई भी चीज़ जो है भगवान से अलग होकर के उत्पन्न हुई है, ये नहीं है। भगवान से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। अहम आदि ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वशा, वो मुझे नहीं जानते, नमे विदु सुरगणा प्रभुम नाम महर्षिया। जो वेद मंत्र और वेद मंत्रों के जो ऋषि हैं वो भी नहीं जानते मुझे। भगवान क्या कहते हैं, न मैं विदु सुरगणा प्रभुम ना महर्षिया, वेद मंत्र भी मुझे नहीं जानते, वेदों के द्वारा भी मैं नहीं जाना जा सकता। वेदेषु दुर्लभम, वेदों के द्वारा भी मैं दुर्लभ हूँ जानना, आप समझो। अदुर्लभम आत्म भक्तो, अपने भक्तों के लिए मैं बहुत सुलभ हूँ और वेदों के द्वारा मैं दुर्लभ हूँ। तो वेद मंत्र भी जो है भगवान का वर्णन नहीं कर सकते, भगवान को नहीं जान सकते। हाँ वो दिशा दिखाते हैं, आप उस दिशा में चलेंगे, लेकिन जब तक आप भक्ति के क्षेत्र में नहीं प्रवेश करते हैं आप भगवान को नहीं पा सकते। अदुर्लभम आत्म भक्तो, अपने भक्तों के लिए वो सुलभ है। ठीक है, रसातल सबसे नीचे है, हतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, पाताल सबसे नीचे है। तो सप्त जो भूविवर हैं उनमें सबसे नीचे पाताल है, छठवां रसातल है, सातवां पाताल है। ये जो है भूविवर है, ये सप्त लोक नीचे वाले। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री राधा गोविंद और सीताराम लक्ष्मण हनुमान पंचतत्व की जय।